नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत योजना के विस्तार को मंजूरी दी। इसमें 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक शामिल होने से लगभग 6 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में प्रमुख भूमिका निभाने जा रहा है। लखनऊ की विशेष अदालत ने अवैध धर्म परिवर्तन मामले में 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सरकार ने भारतीय उद्यमियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने के लिए ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। वर्तमान चैंपियन भारत ने मलेशिया को 8-1 से हराकर एशियाई चैंपियंस हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज देने को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी।
प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 70 वर्ष की आयु के ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा और 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हो, ये नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। और इससे देश में करीब 4.5 करोड़ फैमिलीज, जिसमें करीब 6 करोड़ सीनियर सिटीजन कवर होंगे।
सरकार ने 31,350 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए 12,461 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2024-25 से 2031-32 तक इन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने 2 साल की अवधि में 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना में अब ई वाउचर शामिल होंगे जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेंगे।
पीएम ई ड्राइव 10,900 करोड़ रुपीस का ये प्रोग्राम है। फेम 1 और फेम 2 अच्छे सक्सेसफुल कार्यक्रम रहे थे। 16 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल सपोर्ट हुए हैं फेम 1 और फेम 2 में। आज पीएम ई ड्राइव स्कीम लॉन्च हुई है। इसमें 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, ट्रक्स और एम्बुलेंसेज और ई बसेस को कवर किया जाएगा। बहुत बड़ा फोकस किया गया है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को देश भर में डेवलप किया जाए। इसके लिए 88,500 साइट्स को सपोर्ट करने के लिए 100% सपोर्ट होगा।
सरकार ने सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों द्वारा ई बसों की खरीद और संचालन के लिए 2024-25 से 2028-29 की अवधि के लिए पीएम ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने 25,000 असंबद्ध बस्तियों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी। 2 वर्ष में 2,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश को मौसम के पूर्वानुमानों और जानकारी के मामले में अधिक सक्षम बनाने के लिए मिशन मौसम को भी मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को आगे बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया में श्री मोदी ने कहा कि सरकार हर डिवाइस को भारतीय चिप से लैस करने के लिए देश में चिप उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर उत्पादन बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना के लिए मदद देना शामिल है।
भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए 50% सपोर्ट भारत सरकार दे रही है। राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर और मदद कर रही है। भारत की नीतियों के कारण ही बहुत कम समय में 1.5 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में भारत में हो चुके हैं। इसलिए चाहे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो या सेमीकंडक्टर्स हो, हमारा फोकस एकदम क्लियर है।
इससे पहले एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा परिवर्तन वैश्विक चिंता का विषय है। हरित हाइड्रोजन पर एक वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि कार्बन उत्सर्जन को खत्म करने के लिए हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरित हाइड्रोजन उन उद्योगों में कार्बन उत्सर्जन खत्म करने में मदद कर सकता है जिन्हें विद्युतीकरण करना मुश्किल है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है।
इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुटे पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है।
आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें।
आवेदन 15 सितंबर 2024।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय उद्यमियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने के लिए आज नई दिल्ली में ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े नियमों, व्यापार समझौतों, व्यापार साझेदारी, सीमा शुल्क और विदेशी खरीदारों की सारी जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि ई प्लेटफॉर्म से वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में सीमा क्षेत्र विकास सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि भारत की भू रणनीतिक स्थिति कुछ ऐसी है कि उसे कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका सीमा क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करना है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने पर सरकार विशेष जोर दे रही है।
2020 से लेकर 2023 तक के 3 वर्षों में लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश का टूरिज्म 30% तक बढ़ा है। इसी तरह कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों की अपेक्षा टूरिज्म में अच्छी खासी बढ़ोतरी भी देखी गई है। बढ़ते टूरिज्म का ही असर है कि इन क्षेत्रों में जॉब क्रिएशन और लोकल इकोनॉमी में भी वृद्धि देखी गई है। और मुझे बताया गया है कि लोकल हैंडीक्राफ्ट, हॉस्पिटैलिटी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में पिछले कुछ वर्षों में अच्छी खासी संख्या में जॉब भी क्रिएट हुए हैं।
केंद्र ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदने के मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी दी।
पिछले दिनों मध्य प्रदेश के किसान चिंतित थे, सोयाबीन एमएसपी के नीचे बिक रहा। पहले हमने महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन की खरीदी की अनुमति दी थी। कल रात को ही मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव आया है एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी का। उस प्रस्ताव को हमने स्वीकृति दे दी है। सोयाबीन जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर खरीदा जाएगा।
लखनऊ के राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण और आतंकवाद निरोधी दस्ते की एक विशेष अदालत ने आज अवैध धर्मांतरण मामले में 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 4 अन्य अभियुक्तों को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ते ने अपने आरोप पत्र में कहा कि मौलाना कलीम सिद्दीकी, उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर आलम पूरे देश में अवैध धर्मांतरण रैकेट चलाते थे। मौलाना सिद्दीकी धर्मांतरण के लिए विदेशों से धन प्राप्त करने में भी शामिल था। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। सेना ने कहा कि सुबह जम्मू संभाग में उधमपुर और कठुआ जिलों की सीमा पर बसंतगढ़ के ऊपरी इलाकों में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हुई। अभियान जारी है, ब्यौरे की प्रतीक्षा है। केंद्र ने खालिस्तानी समर्थक समूह सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। ये प्रतिबंध गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत लगाया गया है। संगठन ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहा है जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा है। केंद्र ने 2019 में संगठन पर प्रतिबंध लगाया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमेरिका में कथित भारत विरोधी टिप्पणियों के लिए उनकी कड़ी आलोचना की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह की भ्रामक और आधारहीन बातें कह रहे हैं वो बेहद शर्मनाक हैं। श्री सिंह ने कहा कि देश में सिख समुदाय पर राहुल का बयान पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने ये भी दावा पूरी तरह गलत है कि एनडीए सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है। भारत चीन सीमा विवाद पर उनके दावे को रक्षा मंत्री ने भ्रामक और तथ्यों से परे बताया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी की टिप्पणियों पर नाराजगी जताई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने आज अपनी चौथी सूची जारी कर दी। सूची में 21 उम्मीदवार शामिल हैं। सोनीपत से देवेंद्र गौतम और गुड़गांव से निशांत आनंद चुनाव लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को डोडा में रैली करेंगे। कांग्रेस पार्टी के इमरान प्रतापगढ़ी शुक्रवार को चरवा कहरा में जनसभा करेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला कल डोडा जिले में रैलियों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने झारखंड विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है। झारखंड में पार्टी प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला जल्द ही तय किया जाएगा। नागालैंड सरकार ने दीमापुर चुमुकेदीमा और न्यूलैंड जिलों के लिए इनर लाइन परमिट लागू करने को मंजूरी दे दी है। इनर लाइन परमिट व्यवस्था के अंतर्गत दीमापुर के निवासियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। श्रेणी एक और दो के निवासियों को इनर लाइन परमिट की अनिवार्यता से छूट दी जाएगी। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ अदालत के समक्ष पूरक आरोप पत्र दायर किया था। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं स्पर्श सक्सेना।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 398 अंक घटकर 81,523 पर बंद हुआ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 123 अंक फिसलकर 24,918 पर रहा। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर की तुलना में बिना किसी बदलाव के 83 रूपये और 98 पैसे के स्तर पर बंद हुआ और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $70.89 प्रति बैरल पर थी।
महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी तालुका में बिजली की तार की चपेट में आने से चार किसानों की मौत हो गई। इस हादसे में एक किसान घायल भी हुआ है। घटना उस समय हुई जब किसान खेतों में खाद डालने का काम कर रहे थे। घटना की जांच की जा रही है। मौसम विभाग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले छह दिन तक असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बहुत तेज बारिश का अनुमान है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में भी शनिवार तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। शनिवार से सोमवार तक छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा होगी। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवा मामलों के विभागों के मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। डॉ मांडविया ने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं को शामिल करने के लिए एमवाई भारत प्लेटफॉर्म के महत्व पर बल दिया। भारत एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। चीन में वर्तमान चैंपियन भारतीय टीम ने मलेशिया को 8-1 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। राजकुमार पाल ने हैट्रिक लगाई। अराईजीत सिंह हुंडल ने दो तथा जुगराज सिंह और हरमनप्रीत और उत्तम सिंह ने एक एक गोल किए। इससे पहले भारत ने चीन और जापान को आसानी से हराया था। दिल्ली में 63वें सुब्रतो कप फुटबॉल के अंडर 17 बालक वर्ग का खिताब पीजी इंग्लिश स्कूल मणिपुर ने जीत लिया है। फाइनल में उसने मिंगकेन क्रिश्चियन हाई स्कूल मेघालय को रोमांचक मुकाबले में 4-3 से पराजित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत योजना के विस्तार को मंजूरी दी। इसमें 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक शामिल होने से लगभग 6 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में प्रमुख भूमिका निभाने जा रहा है। लखनऊ की विशेष अदालत ने अवैध धर्म परिवर्तन मामले में 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सरकार ने भारतीय उद्यमियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने के लिए ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए और वर्तमान चैंपियन भारत ने मलेशिया को 8-1 से हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।